15 on 7th of July 2007, and the topic is Overcoming Material Desires. Hare Krishna.
हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है।
ओम अज्ञानस्मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे।
हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की भगवत कक्षा में। तो परम सौभाग्य की बात है और हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज के कि हमें यह अवसर मिल रहा है सबको कि भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं, भागवत का कीर्तन कर पा रहे हैं। ये वास्तव में सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है कि हम भागवत के संपर्क में आ रहे हैं। तो जो आजकल प्रसंग चल रहा है ये बहुत ही रुचिकर प्रसंग है, राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। लेकिन जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो शिला व्यासदेव जी ने ग्रंथ की रचना की है हम सबके हृदय में क्रांति लाने के लिए। और ये जो प्रसंग चल रहा है अगर हम इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हमें नारद मुनि जी कृपा प्राप्त होगी और व्यासदेव जी कृपा प्राप्त होगी। और इसमें जो राजा पुरंजन है अगर इसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हम सबको ऐसा लगेगा कि हमारे गुणों का वर्णन किया जाए। तो हमें इस चरित्र के साथ अपनी बहुत ही पहचान करनी चाहिए और जोर जोर फिर जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि हम सब पाएंगे कि राजा पुरंजन के साथ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो जो जिन जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो हमारे में गुण पाए जाते हैं। और फिर जो अंत में नारद मुनि जी समाधान देंगे उस समाधान को अपने जीवन में उतार पाएंगे। ये बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ पे राजा बाची भरिसत को भगवत मार्ग में लगाने के लिए नारद मुनि जी ने एक रूपक चित्रण का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राजा पुरंजन थे। पुरंजन का अर्थ है जीवात्मा जो कि शरीर के अंदर बद्ध है। तो बता रहे हैं कि राजा पुरंजन सुख पाने की इच्छा से अलग अलग स्थानों पर भटक रहा है, यानी कि जीवात्मा अलग अलग शरीरों में भटक रही है सुख की इच्छा से। और सुख की इच्छा से भटकते भटकते एक बार हिमालय पर्वत के दक्षिणी दिशा में आए, यानी कि भारतवर्ष में आए। और फिर भारतवर्ष में उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे, यानी कि भारत भूमि में जिनको ये मनुष्य देह प्राप्त होता है उसका वर्णन किया जाता है। इस मनुष्य शरीर में 9 द्वार है। तो राजा पुरंजन ने देखा कि इस भारत भूमि में एक 9 शरीर वाला शहर है, इस शरीर को शहर बताया गया। फिर बताया कि यह नगर चारों ओर दीवानों तथा उद्यानों से घिरा था, उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थी। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए जो बोले दीवारें हैं उसकी तुलना की गई त्वचा से, झरोखों की तुलना की गई आंखों से, है ना। और शरीर में पड़ी छुरियां हैं उसकी तुलना की गई खाइयों और नहरों से। तो ये जब भारत भूमि में एक मनुष्य देह है उसकी तुलना फूल देह की वर्णन किया गया। और आज के श्री श्लोक में बताया गया कि उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। और अब पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था बाहरी शरीर का और आज के श्लोक से वर्णन हो रहा है अंतःकरण का। और बताया गया है श्री प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अब उस नगर की राजधानी का वर्णन हो रहा है। तो जिस ढंग से हम देख सकते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े भवन है, सारा ऐश्वर्य है, उसी ढंग से जो ये शरीर है, शरीर रूपी नगरी की जो राजधानी है वो क्या है, हृदय। और इस हृदय में जो बड़ी बड़ी इमारतें भवने हैं वो किससे बने हुए हैं, नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित है। तो इनकी तुलना की गई है हमारी भौतिक सुख की योजनाओं से। तो बता रहे हैं कि हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। हमारे हृदय में पूरा एक सेंटर है जिसमें तरह हमेशा प्लानिंग चलती रहती है कैसे हम इंद्र तृप्ति कर सकें, कैसे हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकें। तो ये हृदय में प्लानिंग सेंटर है जो चलता रहता है। तो भागवत में वर्णन आता है कि ये हमारे हृदय का रोग है, कामम हृदय रोगम। ये जो भौतिक सुख की प्राप्ति है कि इच्छा, ये काम है। हम सब जानते हैं काम और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम का अर्थ है कृष्ण को सुख देना और काम का अर्थ है अपने शरीर को सुख देना। तो ये हृदय में जो काम की इच्छाएं हैं इसको रोग बताया गया है, कामम हृदय रोगम। और आज संसार में पूछा जाए कि सबसे बड़ा रोग क्या है तो पूरे विश्व का सर्वे करके लोग बोलेंगे हार्ट डिजीज, हृदय का रोग सबसे बड़ा रोग है। तो वास्तव में हृदय का रोग ही सबसे बड़ा रोग है, लेकिन लोग जानते नहीं कि हृदय का असली रोग क्या है। डॉक्टर्स तो ये बोलेंगे कि आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, हृदय में कोई छिद्र है, ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, बाईपास सर्जरी करेंगे, लेकिन वो जितना मर्जी कर ले असली रोग ठीक नहीं होगा। असली रोग है कामम हृदय रोगम, ये भौतिक सुख की योजना बनाना हमारा सबसे बड़ा रोग है। और इस संसार में जितने दुख हैं, जितने भी दुख आ रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि हम अपने हृदय में भौतिक सुख प्राप्त करने की योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले सुनामी आई तो बड़ा एनालिसिस किया गया क्या कारण था, बताया गया यहाँ पे ऊंचा दबाव था, यहाँ पे नीचा दबाव था, इस सब के कारण सुनामी आई। कहीं पे भूकंप आता है, भूचाल आता है तो वगैरह पृथ्वी की लहरें हिल गई, जो अंदर की स्तर है वो हिल गई, किसी के शरीर में कुछ कष्ट होता है तो डॉक्टर बड़ी बड़ी मशीनों पर व्यक्ति को घुसा देते हैं, तरह तरह के टेस्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं ये आपको आपकी बीमारी कारण ये है। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे कारण झूठे हैं, चाहे कोई आधिदैविक कष्ट हो, आधिभौतिक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो, इन सब का मूल कारण है हमारे हृदय में बची हुई काम इच्छाएं। इस बात को हमने समझना चाहिए और इस बात को हमने व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितने भी संकट आ रहे हैं, आज संसार में हर व्यक्ति दुखी है और वो सोचते हैं कि मुझे दुख प्राप्त हो रहा है अपनी पत्नी से, अपने पति से, किराएदार से, मकान मालिक से, दुकानदार से, पड़ोसियों से, मित्रों से, तरह तरह के हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, अपने शरीर से, मन से, प्रकृति से। इन सब दुखों का कारण है कि मेरे हृदय में काम वासनाएं हैं, ये मेरे दुखों का कारण है, इसकी जिम्मेवारी मुझे उठानी चाहिए। हम सब दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं कि ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे दुखों का कारण है। सारे दुखों का कारण यही है कि हम कृष्ण से विमुख होकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक हम ये जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे हम अपने जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव करना चाहिए कि मेरे दुखों का कारण ये है कि मैंने कृष्ण से अपने मुख को मोड़ लिया था। कृष्ण भूलिया जीव अनादि वही मुखे, अते संसार अते माया तार दे संसार दुखे। जब से मैंने कृष्ण अपना मुख कृष्ण से मोड़ा है कि संसार में मुझे तरह तरह के दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो जितनी ज्यादा हम भौतिक सुख प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं उतना ही ज्यादा हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए बोला गया है कि ये भौतिक जगत बहुत विडंबनाओं का जगत है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी हम योजनाएं बनाते हैं कि हम सुखी हो जाएं, जितनी बड़ी योजनाएं बनाते हैं उतना ही बड़ा हमें दुख मिलता है। और इस संसार में हरेक जीव अपने आप को क्या सोचता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। वास्तव अगर मैं करता होता तो मेरे हर कार्य के पीछे उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। तो अगर मैं करता हूं और मेरे हर कार्य के पीछे उद्देश्य है सुख प्राप्त करना तो वो सुख मुझे मिलना चाहिए, वो सुख नहीं मिलता। इसका क्या हुआ कि आप करता नहीं है। हम सबकी वही स्थिति है जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग उसके हाथ में है लेकिन उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन स्टीयरिंग भी हम चला पकड़े हुए हैं लेकिन दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तो कितना हम चला पाएंगे? तो थोड़ा सा मैनुअल कर पाएंगे, हम सोचेंगे हम करता है, हम कंट्रोलर है। इसका मतलब परम नियंता सुप्रीम कंट्रोलर कोई और है। वास्तव में हम करता होते तो हमारे हर कार्य का जो लक्ष्य है सुख प्राप्त करना वो हम प्राप्त कर लेते। तो इस चेतना से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और फिर जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि वास्तव में असली कर्ता और असली नियंता कौन है, क्यों नहीं मुझे सुख की प्राप्ति होती है, सारी की सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। और हमारे जीवन में आनंद प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी बाधा है वो है भौतिक इच्छाएं। सबसे बड़ी बाधा आनंद प्राप्त करने की, जो हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, ये भौतिक इच्छाएं। तो हमें इन भौतिक इच्छाओं को से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, इस हृदय के रोग से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही किसी जीव में कृष्ण से विमुख होकर इच्छा प्राप्त इच्छा जागृत होती है, तुरंत हमारा पतन हो जाता है, हम अपने वास्तविक स्थिति से गिर जाते हैं। तो इस संसार में कोई भी जीव जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं वो पतित है, वो पतित जीव कहलाएगा जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। चाहे दिखने में वो बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो संसार में है, उसको शरीर प्राप्त हुआ है, वो पतित है। तो अगर हम जनसाधारण में बातें करें तो हर व्यक्ति इस बात से मान जाता है कि वास्तव में संसार में दुख ही दुख है, इसमें किसी की कोई दो राह नहीं है, बोलते हैं वास्तव में बहुत दुखी है हर कोई। तो फिर भी हम इन दुखों के निवारण के लिए असली कार्य नहीं करते, क्यों? तो भगवान उद्धव को बताते हैं कि दुखोत्कर्मणि संपश्य, दुखोत्कर्मणि सब देख रहे हैं, संपश्य देख रहे हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं इससे मुझे दुख प्राप्त होगा, इससे मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। दुखोत्कर्मणि संपश्य रजोवेग विमोहिता, फिर भी रजोगुण के वेग के कारण वो विमोहित हो जाता है। रजोगुण का प्रभाव इतना भारी है कि व्यक्ति विमोहित हो जाता है और जानते हुए भी वो कार्य करता है जिससे उसको दुख प्राप्त होते हैं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, विदंती मर्त्या प्रायण विष्यन पदमा पदम, विदंती सब जानते हैं, मर्त्या मनुष्य, प्रायण जनरली अक्सर अधिकतर, विदंती मर्त्या प्रायण विष्यन कि विषयों का जीवन, विषय भोग का जीवन, इंद्र तृप्ति का जीवन, पदमा अपदम ये बहुत ही अमंगलकारी है, दुखदायी है, फिर भी तथो भुंजते कृष्ण, फिर भी लोग इसका भोग करते हैं। तब कथा श्व खर अजनुवा कि तब भी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, किसकी तरह? श्व जैसे कुत्ता, ख गधा और अज बकर, बोल रहे थे कुत्ता गधे और बकरे की तरह मनुष्य गण इस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, ये जानते हुए कि ये मार्ग दुखकारी है। तो तात्पर्य बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे मनुष्य कुत्ते गधे और बकरे की तरह बर्ताव करता है, सब कुछ जानते हुए भी, समझदार होते हुए भी। जैसे एक कुत्ता है तो सड़क पर चल रहा है और दूसरी तरफ वो देखता है एक मादा कुत्ते को और वो मैथुन करके उसके पीछे भागता है, और जो मादा कुत्ता है वो उसको दांत दिखाती है, उसको काटती है, उसको भौंक के भगा देती है, फिर वो उतना डीठ है फिर उसके पीछे लगा रहता है और मैथुन करके ही छोड़ता है, और उसके कई कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उससे लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं, और फिर ये कुत्ता इतना डीठ होता है कि कहीं भी से कुछ खाने की सामग्री मिल जाए वो खाने को भागता है। लोग इसको पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, इसको भगाते हैं, तो इसको मालूम है कि बहुत बड़ा खतरा है, लोग मारेंगे, भोंकेंगे, मुझे काटेंगे, भगा देंगे, फिर भी उतना डीठ है कि इंद्र तृप्ति में लगा रहता है। तो हम सबकी भी यही हालत है, बार बार कष्ट उठाने के बाद देख रहे हैं कि हर व्यक्ति दुखी है, मार पड़ रही है, फिर भी हम सुधरते नहीं हैं और फिर हम इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं। फिर बताया गया गधा, गधा गधे की तरफ जाता है और गधी उसको एक जोर से टांग मारती है और फिर बेचारा आता है, फिर उसको टांग पड़ती है और अपने मैथुन की इच्छा को संतुष्ट करता है, और फिर दिन भर वो धोबी के लिए कार्य करता है, धोबी उसके बोझा डालता रहता है और बोझा इसलिए उठाता रहता है, जब तक मैं बोझा नहीं उठाऊंगा मुझे घास खाने को नहीं मिलेगी। घास भी है, गधा भी है, बड़ी आसानी से वो घास खा सकता है, लेकिन उसके अंदर ये बहम बैठ गया है कि जब तक मैं धोबी का कार्य नहीं करूंगा मैं घास खाने के योग्य नहीं हूं। इसी ढंग से संसार में हर व्यक्ति गधों की तरह काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं अपने परिवार का पालन कर रहा हूं, जब तक मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। अगर पूछा जाए कि इसी समय आपके शरीर से आत्मा छीन ली जाए तब आपके परिवार का पालन कौन करेगा, सभी परिवार का पालन होगा, तो व्यक्ति गधे की तरह लगा हुआ है, और दूसरा है बकरा। श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बकरों के लिए क्या किया जाता है कि जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं, कसाई होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बकरों को पकड़ के ले जाते हैं और उनको अच्छी अच्छी घास खिलाते हैं, और जैसे जैसे बकरा कसाई घर की तरफ बढ़ता जाता है, घास की क्वालिटी बढ़ती जाती है, घास और हरी होती जाती है फ्रेश, और बकरा वो घास खाता रहता है, उनको और आनंद आता है, और उसके बीच में उसको मैथुन की सुविधा भी मिल जाए तो मैथुन भी कर लेगा, और उसके सामने वो देख रहे हैं कि आने वाले बकरे को ले जाया गया कसाई घर में और काट दिया गया, बोले मुझे क्या चिंता, मुझे घास मिल रही है, मुझे मैथुन मिल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। तो हम सबकी भी यही हालत है, हम सबको देख रहे हैं कि हमारे सामने लोग सब शरीर छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग जाते हैं शमशान घाट में, क्रिया करते हैं, शरीर को जला देते हैं, कुछ समय के लिए भी वैराग्य नहीं आता, बाहर आकर फिर से हम इन वृत्ति में लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ठीक है ये पार्ट ऑफ लाइफ, सब मर रहे हैं तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जब तक जीवन है भोग करो आनंद करो, तो सब लोग इसी भोग में लगे हुए हैं। तो एक जो बकरा है जिसको काटा जा रहा है, वो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता कि मुझे दुख क्यों प्राप्त हो गए, लेकिन मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि why am I suffering, मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हो गए, मैं हर कार्य करता हूं सुख की इच्छा से और प्राप्त होते हैं मुझे दुख, ऐसा क्यों? तो हम सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि मैं सुख की इच्छा होते हुए भी मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। तो जब तक ये भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में रहेंगी, जीव हमेशा दुखी रहेगा। तो जब उद्धव जी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है, सब कुछ जानते हुए भी हम पशुओं की तरह कार्य करते हैं और इन वृत्ति में लगकर दुख प्राप्त करते हैं, तो भगवान ने वही उत्तर दिया जो उन्होंने गीता में अर्जुन को दिया था। उन्होंने ये बताया कि रजोयुक्तस्य मनसा संकल्प विकल्प, कि रजोगुण के प्रभाव से मन जो है संकल्प और विकल्प करता है, मन कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता है कुछ चीजों को रिजेक्ट करता है, कि ये वस्तुएं मेरी इंद्र तृप्ति के लिए लाभकारी हैं और ये वस्तुएं इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, उनको वो रिजेक्ट कर देता है। ये रजोगुण के प्रभाव से होता है, और इसी रजोगुण का अर्थ है दुख ही दुख। जितना हमारे अंदर रजोगुण होगा उतना जीवन हमारा दुखदायी होगा। इसलिए मनुष्य जीवन के उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने सत्वगुण को बढ़ाएं। तो प्रश्न उठता है कि जो हृदय है जिसमें भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का जो केंद्र बना हुआ है, ये हृदय भौतिक सुख की इच्छाओं के लिए नहीं है। ये हृदय है मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है जो कि बहुत दुर्लभ है, तो इस दुर्लभ देह का प्रयोग हमें करना चाहिए कोई दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और जो सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, क्या है सबसे दुर्लभ वस्तु? सबसे दुर्लभ वस्तु है भक्ति, सुदुर्लभ इसका एक गुण है। तो मनुष्य देह का प्रयोग करना चाहिए हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए। जो ये हृदय है ये रिजर्व होना चाहिए ओनली फॉर कृष्णा। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो सम टेबल का रिजर्व, तो उसमें कोई नहीं बैठ सकता, एक मक्खी को भी नहीं बैठना चाहिए, मच्छर को भी नहीं बैठना चाहिए। उसी ढंग से हमारा हृदय केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। एक ही हृदय है हमारे पास, बस इसको हमने रिजर्व रखना है कृष्ण के लिए। तो इस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस हृदय को कैसे शुद्ध किया जाए। ये भौतिक इच्छाएं कलमश की तरह है, तो इसको कैसे शुद्ध किया जाए ताकि एक आल्टर बन सके और उस आल्टर में हम राधा कृष्ण को बिठा सके। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम हृदय को अपने शुद्ध कर सके इस भौतिक भोग की इच्छाओं से। तो कैसे इस भोग की इच्छाओं से अपने आप को मुक्त किया जाए? तो एक बार यही प्रश्न चार कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा। चार कुमारों ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, मन विषयों में लगा हुआ है, तो इन मन को विषयों से कैसे अलग किया जाए? उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि विषय मन के अंदर है कि मन विषय के अंदर है? प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो मन है वो विषयों में घुसा हुआ है कि जो विषय है वो भौतिक इच्छाओं के रूप में मन में घुसे हुए हैं। तब क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा तो हम मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो कैसे जीव मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर सकता है, क्योंकि मन ही विश्व में घुसा हुआ है और विषय भी मन में घुसे हुए हैं। तो जब यह प्रश्न चार कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए कि मन विषय में घुसा हो गया, विषय मन में घुसे हुए, इन दोनों को अलग कैसे किया। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। देखिए, ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, भागवतम सुनाई, और ब्रह्मा जी ने भागवतम के दूसरे स्कंध के छठे अध्याय के 34वें श्लोक में नारद जी को बोला था, ना भारती मे अंग दृश्य उपलक्ष्यति, कि हे नारद मुनि, मेरे जीवा के जो वाक्य निकलेंगे वो सत्य होंगे। उन्होंने ये बोला कि मेरी इंद्रियां कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगी और मेरा मन कभी भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि मैंने बड़ी दृढ़ता से श्री हरि के चरणों को अपने हृदय में बिठा रखा है। तो ऐसे ब्रह्मा जी, जिनको इतना आत्मविश्वास था कि मेरे वाक्यवाणी में जो भी वाक्य निकलेंगे सत्य निकलेंगे, मेरा कभी मन विचलित नहीं होगा, इंद्रियां गलत रास्ते से नहीं जाएंगी, अब वो विचलित हो गए। तो यहां पे बताया जाता है कि चाहे ऊंचा सा ऊंचा भी भक्त क्यों ना हो, उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। भक्ति का मार्ग है, श्री प्रभुपाद कहते हैं, तलवार की धार पे चलने के समान, सूरत से धारा निशितो दुरत्या, बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं। तो जब भी भगवान के भक्तों पर कोई समस्या आती है तो भगवान का आश्रय लेते हैं। तो उन्होंने भगवान का आश्रय लिया और भगवान फिर अवतरित हुए उनके सामने हंस अवतार के रूप में। तो हंस अवतार के रूप में भगवान अवतरित हुए और फिर उन्होंने चार कुमारों के इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो भगवान ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले कि विषय भी मन के अंदर घुसे रहते हैं और मन भी विषयों के अंदर घुसा रहता है। इसको कैसे समझे कि मन विषयों के अंदर घुसा रहता है? देखिए, बताया जाता है कि मन एक चुंबक के समान है और जितने भी इंद्रियों के विषय हैं ये लोहे के कण हैं। तो जैसे ही चुंबक, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, चुंबक अपने चारों ओर जितने भी इंद्रियों के विषय अपने प्रति उनको अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। हम देख सकते हैं, कहा जाता है कि वर्ल्ड इज एन इमेज ऑफ माइंड। आदमी वही देखता है जो देखना चाहता है, वही सुनता है जो सुनना चाहता है ना। जैसे अगर हम कभी ट्रेन के सफर में निकलते हैं तो हमें कोई भी व्यक्ति दिखाई दे जाए जिसने कंठी माला डाल रखी है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हजारों व्यक्तियों में हम उस व्यक्ति को पहचान जाएंगे कि हाँ, ये वैष्णव है जिसने कंठी माला डाल रखी है, क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति होगा जो चेन स्नेचर होगा, वही देखता रहेगा किसने कौन सी चेन डाल रखी खींची है, उसको कोई मतलब नहीं होगा कंठी डाल रखी क्या डाल रखी है, वो देखा किसने सोने की चेन डाल रखी है उसको मैं छीन सकूं। तो व्यक्ति उसको वही दिखाई देगा क्योंकि मन उसका उसमें लगा हुआ है। इसी ढंग से हम कई बार गुजर जाते हैं सड़कों से, किसी के खाने में रुचि है तो वो तुरंत नोट कर लेगा, हाँ ये रेस्टोरेंट में आलू की टिक्की अच्छी मिलती है, इसकी यहाँ मिठाई अच्छी मिलती है, और जिसमें से कोई रुचि नहीं है वो सीधा निकल जाएगा, वो देखेगा भी उस तरह। कई लोग अखबार खोलते हैं, अखबार में कई तरह के समाचार होते हैं, लेकिन इसकी खेलकूद में रुचि है और छोटी से कॉलम को भी पकड़ लेगा कि देखो यहाँ पे अखबार में आया। जिसकी शेयर मार्केट में रुचि है वो शेयर मार्केट की न्यूज को पकड़ लेगा। तो मन विश्व में घुसा हुआ है, हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो हम चाहते हैं, जिसकी इच्छा है। और इसी ढंग से जो इंद्रियां हैं वो मन के लिए द्वार का काम करते हैं, इनपुट गेट्स हैं, और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विषय मन के अंदर प्रवेश करके इच्छाएं बन जाती हैं। तो भगवान ने कहा इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ दे, क्योंकि मन हमारे साथ कई जन्मों से चल रहा है और कई जन्मों से इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से इसके अंदर तरह तरह की इच्छाएं आ गई। तो मन को विषयों से हम अलग नहीं कर सकते और विषयों को भी मन से अलग नहीं कर सकते। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें इनको अलग करने का प्रयास नहीं करना, हमने इन दोनों को ही रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि आत्मा का मन से और इंद्रियों के विषयों से कोई भी लेना देना नहीं है। आत्मा पूर्ण रूप से चिन्मय है, मन भी जड़ है और भौतिक इंद्रिया और उनके विषय भी जड़ है, तो पूर्ण रूप से हमें इनको रिजेक्ट कर देना है। यह अति आवश्यक है, क्योंकि बताया जाता है महावीर स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे कि मन और इंद्रियों का आपस में क्या संबंध है। बताया जाता है कि एक मन मिट्टी के समान है और जो इंद्रियां हैं वो कुम्हार के समान है। तो जिस इंद्रियों के द्वारा हम किसी इंद्रिय विषय की वस्तु को देखते हैं उसकी छाप हमारे मन में पड़ जाती है। अगर एक युवक निरंतर युवती के बारे में सोच रहा है तो धीरे धीरे उसके मन में युवती की छाया क्रिएट हो जाएगी और निश्चित रूप से वो उसके ऊपर मेडिटेट करेगा और अगले जन्म में उसको एक स्त्री का ही शरीर मिलेगा। इसलिए भागवत में तीसरे स्कंद में भगवान कपिल बताते हैं कि अधिकतर जो इस जीवन में जिनको स्त्रियों का देह प्राप्त हुआ है पिछले जन्म में वो अधिकतर पुरुष थे और वो स्त्रियों से आसक्त थे, और इस जन्म में जो पुरुष की देह में वो स्त्रियां थी और पुरुष के देह से आसक्त थे और ये चलता रहेगा। फिर अभी जो लोग यहां बैठे हैं वो यहां बैठे हैं, इलेक्शन में जो यहां बैठे हैं वो यहां बैठे हैं। तो सावधान रहना चाहिए, बुरा मत मानिए, बहुत सावधान रहना चाहिए हमें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि अभी हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, नहीं, हम आत्मा है। ये हमारे मन के कारण हम ये देह प्राप्त हो गया है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। संस्कार छप जाते हैं मन के ऊपर और धीरे धीरे वही मूर्ति बन जाती है और उसी मूर्ति को हम स्वीकार करते हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या छू रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल लोग सारे आप दूरदर्शन देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, कोई मालूम नहीं इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जितना हम देख रहे हैं वैसी इच्छाएं बनती जा रही हैं, वैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसी इच्छाएं बनेंगी और वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी इस जन्म में। हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मन बूढ़ा नहीं होता, इच्छाएं युवा रहती हैं और फिर उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। शरीर बूढ़ा हो चुका है, इंद्रियां शीतल हो चुके हैं, इच्छाएं बड़ी दृढ़ हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर से एक और जन्म हमें लेना पड़ेगा। हम जब देखते हैं कई बार बच्चों को बहुत मूर्खता के काम कर रहे होते हैं बच्चे, तो कोई सोचे इतने मूर्खता के काम क्यों कर रहे हैं। तो मूर्खता के काम इसलिए कर रहे हैं कि वो मूर्खता की इच्छाएं हमारे जब पिछले जन्म में बूढ़े थे तो मूर्खता की इच्छाएं भरी पड़ी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति वो मूर्ख कार्य नहीं कर सकता, तो भगवान उसको फिर से बच्चा बनाते हैं, फिर वो उल्टे सीधे जो कार्य करना कर लो, फिर वो बड़ा होता है, फिर इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर शरीर पुराना हो जाता है, फिर वो शरीर खत्म, फिर एक नया शरीर। तो देखिए बार बार हम माँ के घर में घुसते हैं, बार बार कष्ट देते हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, बीमारियों का कष्ट, किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर एक भौतिक इच्छा है। और ये भौतिक इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के जो विषय हैं उनके संपर्क से। बहुत सावधान होना चाहिए। श्री अपावा कहते हैं ये मनुष्य देह बहुत जिम्मेवारी का देह है। देखिए केवल एक मनुष्य देह में ही हम अपनी भौतिक इच्छाओं का दमन कर सकते हैं। भौतिक सुख की योजनाएं तो कुत्ता बिल्ली भी बनाते हैं। बिल्ली बहुत प्लानिंग करती है कि किस समय मैं रसोई घर में जाकर दूध पीऊं, बहुत योजना बना के वो चलती है और फिर अपनी योजना में वो सफल हो जाते हैं। तो अगर हमारी भी यही योजनाएं हैं कि कैसे मैं आहार निद्रा भय मैथुन करूं, तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। हमारे को ये योजनाएं बनानी चाहिए कैसे मैं भौतिक इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करूं, ये योजनाएं होनी चाहिए। यही मनुष्य और पशु में अंतर है। जब तक ये भौतिक इच्छाएं रहेंगी, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं अगर एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह गई तो आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। दोबारा जन्म का अर्थ है फिर से दुख ही दुख। ये शरीर बहुत क्लेश दायी है, ये शरीर इसलिए नहीं मिला। नारायण देहो को देह भाजन लोग के कष्टान कामन हर्तु बिंबुजा में तपो दिव्यम पुत्र कम ये न सत्वम शुद्धे अस्मा धर्म सुखम तो अनंता। प्रभुपाद बहुत बार इस श्लोक को बोला करते थे कि ये मनुष्य देह हमें कुत्ते और सुअर की तरह कष्ट उठाने के लिए नहीं मिला। कष्टान कामन हर्तु बिंबुजा में तपो दिव्यम ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। तो इन भौतिक इच्छाओं का दमन करना दिव्य तपस्या है। तपो दिव्यम जितना ज्यादा हम इच्छाओं का दमन करेंगे, ब्रह्म सुखम तो अनंतम हमें ब्रह्म सुख जो अनंत है वो प्राप्त होगा। और हम इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगा रहे तो प्रभुपाद कहते हैं ऋषभ देव जी के श्लोक को, नूनम प्रमता करोति विक्रमा, वो निश्चित रूप से पागल है। यद इंद्रिय प्रीति आप नोति असनति आस्था क्लेश दहा, ये शरीर क्लेश दहा। भागवत में 11 स्कंद में अद्भुत ब्राह्मण बता रहे हैं ये शरीर अपने आप में गुरु है। किसका शरीर सुख दे रहा है बताइए, किसका शरीर? छोटा बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, ये शरीर हमेशा ही हमें दुख देगा। तो भौतिक इच्छाएं रखने का अर्थ है एक और शरीर, और शरीर मतलब दुख। चाहे जितने मर्जी हम डॉक्टर के पास चले जाएं, वो हमारी बीमारियों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि असली रोग है काम। तो काम को कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य दूर नहीं कर सकता। इस काम को हमें दूर करना है, किसकी कृपा से? कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की कृपा से। तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये रोग हमारे दुखों का कारण है, और इस पूर्ण अवस्था से हमने अपने आप को स्वस्थ करना है। तो कैसे किया जाए, कैसे मन को विषयों से अलग किया जाए, विषयों को मन से अलग किया जाए? तो अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन हृदय को, जो कि इस समय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र है, इसको हम कृष्ण प्रेम की योजनाओं का केंद्र बना सकते हैं। कैसे हम अपने आप को भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर सकते हैं? हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, ये कालिया नाग के समान है। तो इस कालिया नाग का हमें दमन कर, निश्चित रूप से हम इसका दमन कर सकते हैं, और ये मनुष्य भेद इसीलिए प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो भगवान ने उत्तर दिया चार कुमारों को कि किस ढंग से हम मन और विषयों को अलग अलग कर सकते हैं और इनको पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मन तो विषयों की तरफ भागेगा ही भागेगा, और विषय मन के तरफ बहुत तेजी से प्रवेश करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि का प्रयोग करके ये देखना चाहिए कि ये संसार बहुत ही अस्थायी है, जितने भौतिक सुख हैं ये चपल है, टेम्परेरी है, चपल सुख है। चपल सुख का अर्थ है जीवन कलमल कमलत। जिस ढंग से कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद रख दी जाए तो तुरंत गिर जाती है। हम लोग शहर में रहते हैं तो शहरों के हम इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, शहरों में कहीं कमल का फूल दिखाई देता नहीं है, और हम ये प्रयोग करके भी दे सकते हैं। आश्रम में, स्कूल की प्रयोगशालाओं में यही प्रयोग करवाना चाहिए, है ना। तरह तरह के टेस्ट ट्यूब जो है, अलग अलग केमिकल डालते रहते हैं, उसका क्या लाभ है? ये गैस निकली, ये कलर चेंज हो गया, ये कॉपर एक बन गई, ये देखिए, उसका क्या लाभ है? हमारे जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चों को ये दिखाया जाए, ये कमल का फूल पत्ता है, इसके ऊपर एक पानी की बूंद डाली, गिर गई। ये हमने देखा कुछ साल पहले, हम देखे मायापुर में, वहां के कमल के पत्ते बहुत सुंदर सुंदर, और एक उन पानी की डालो, एक सेकंड भी नहीं कमल दलदल जीवन डालता, इतना अस्थाई है। और हर चीज इस भौतिक जगत में अस्थाई है। हम ये नहीं सोचे कि कमल दलदल जीवन डालने का अर्थ है कि खाली ये शरीर अस्थाई है। शरीर तो अस्थाई है, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो भी अस्थाई है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो भी अस्थाई है, हमारा जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है सब के सब अस्थाई है, किसी भी समय समाप्त हो सकते हैं, किसी भी समय। तो इनके पीछे पागल नहीं होना है। तो जब अन्य विषयों की तरफ भागे तो बुद्धि का प्रयोग करना है कि जो भौतिक सुख प्राप्त होगा वो चपल ही तो सुख होगा, टेम्परेरी, ये बात है, मेरे लिए दुख का पड़ेगा, तो तुरंत हम अपनी भौतिक इच्छाओं को रोक सकते हैं। दूसरा, भगवान ने बताया कि जब तुम मेरी भक्ति में लगोगे तो सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। कामा हृदय नश्यन्ति, हृदय के अंदर जो काम वासनाएं हैं ये भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। कपिल भगवान बाबा विभूति को बता रहे हैं कि जर्यतु आशु वा कोशम निगरानी अनलयता, जर्यतु आशु वा कोशम, ये जो भक्ति है ये हमारे सूक्ष्म शरीर को जिसे कहते हैं डिजॉल्व, खुला खोल देती है, नष्ट कर देती है। जैसे कि जब हम खाना पेट में डालते हैं तो जो जठरा अग्नि है पेट की अग्नि भोजन को पचा देती है। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं रह सकती हैं, लेकिन हम भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे तो धीरे 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 ये सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो भक्त है उसके लिए भक्ति का अर्थ है कि अपने जीवन की केवल एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो क्या? केवल कृष्ण भक्ति। भक्त को संसार में क्या हो रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेयर मार्केट बढ़ रही है, डाउन हो रही है, प्रॉपर्टी के रेट ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, कहां तूफान आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे केवल इस बात से फर्क पड़ना चाहिए क्या मैं भगवान और भक्तों की सेवा कर पा रहा हूं कि नहीं। बस ये मेरे जीवन का कंसर्न होना चाहिए। जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था तो कलकत्ता में श्री प्रभुपाद थे और वहां पे बॉम्बिंग चल रहा था तो ब्लैकआउट हो गया। पूरे शहर में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, छिप रहे हैं और श्री प्रभुपाद के घर में ब्लैकआउट हो गया। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, बड़े आराम से कचौड़ी खा रहे हैं। प्रभुपाद जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रभुपाद आराम से कचौड़ी खा रहे हैं। पूरा कृष्ण पे विश्वास है, लक्ष्मण स्थिति पे विश्वास है। तो भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भौतिक जगत में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं। भक्त का केवल एक ही लक्ष्य है कि कैसे मैं भक्ति करता रहूं। तो हमारे जीवन में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण, वही हमारे जीवन की प्रायोरिटी होना चाहिए, टॉप मोस्ट। इनफैक्ट द ओनली प्रायोरिटी इन आवर लाइफ शुड बी कृष्णा। ममेरी वंशो, कृष्ण कह रहे हैं कि केवल मेरे ही अंश हो, मेरे और कृष्ण के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं, ना मेरा बिजनेस, ना मेरा परिवार, ना मेरा समाज, ना मेरा राष्ट्र, मैं और कृष्ण। मैं जीवात्मा हूं, मैं कोई स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, पति नहीं हूं, पत्नी नहीं हूं। इस बात को समझना चाहिए, मैं एक जीवात्मा हूं, कृष्ण के साथ मेरा गहरा संबंध है, मैं और कृष्ण और बीच में कोई नहीं। बाइबल में यह बताया गया है कि अगर कोई भी भगवान आपके और परम भगवान के बीच में आ रहा है तो वो वस्तु परम भगवान बन जाएगी। तो मेरे और कृष्ण के बीच में अगर बिजनेस आ रहा है तो मैं बिजनेस को भगवान समझ रहा हूं, कस्टमर इज गॉड। मेरे और कृष्ण के बीच में परिवार जन आ रहे तो मैं उनको भगवान समझ रहा हूं। केवल कृष्ण होने चाहिए और कोई नहीं, ये है भक्ति। इस तरह की हम भक्ति करेंगे, अविचारिक भक्ति करेंगे तो सारे के सारे हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो तो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा कि जो भक्तगण हैं उनकी जीवन शैली एक भौतिकवादी से बिल्कुल अलग होती है। एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने हृदय में योजनाएं बनाता है कैसे भौतिक सुख प्राप्त हो, लेकिन भक्तगण परेशान होते हैं कि मुझे भौतिक सुख क्यों मिल रहे हैं। जब इस संसार में भक्त देखता है कि सारी की सारी वस्तुएं उसकी योजनाओं के अनुसार हो रही हैं तो भक्त को चिंता होनी चाहिए कि निश्चित रूप से कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी ठीक चल ही नहीं सकता। अगर सब कुछ हमारी भौतिक इच्छाओं के अनुरूप हो रहा है इसका मतलब आपकी सोच गलत है, आप कुछ गलती कर रहे हो। एक भौतिकवादी व्यक्ति सोचेगा वाह क्या मैं ठीक कार्य कर रहा हूं, जो प्लानिंग किया था वो हो रहा है, क्योंकि जो मैंने प्लान किया अगर वही मुझे प्राप्त हो रहा है तो मेरे जीवन में भगवान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, फिर अहंकार बढ़ जाएगा, फिर अपने आपको कर्ता को समझता हूं, यह अहंकार और बढ़ जाएगा। हम देखते हैं संसार में जितने धनी व्यक्ति हैं अक्सर बहुत अहंकार में रहते हैं अगर वो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े हुए। धनी व्यक्ति को भी छोड़िए, एक गरीब व्यक्ति भी अगर प्रेमिका के साथ सिनेमा देखना चाह रहा है तो बहुत अहंकारी अपने आप को अनुभव करता है। देखा आपने, अनुभव किया, वो सोचता है कि मैं राजा हूं, वो ये रानी है, बस और कोई नहीं है हमारे जीवन में। थोड़ा सा उनको सुख क्या प्राप्त होता है वो अपने आपको राजा समझना शुरू कर देते हैं। तो भक्त को एक चिंता होनी चाहिए कि कहीं अहंकार ना बढ़ जाए। इसलिए भक्त भगवान से भौतिक सुखों की प्रार्थना नहीं करता, भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान और से और भौतिक दुख मेरे को प्राप्त हो। कुंती महारानी ने यही तो प्रार्थनाएं की। हस्तिनापुर से जब जाने लगे थे भगवान द्वारका वापस तो कुंती महारानी ने भगवान के रथ को रोककर यही प्रार्थना की कि भगवान मत जाइए, अब सब कुछ सेटल हो गया, हमें राज्य प्राप्त हो गया, अब मुझे ये डर हो रहा है कि कहीं आपको भूल ना जाए। तो निश्चित रूप से आप क्या करिए, अगर आप जा भी रहे हैं तो कृपया करके मेरे जीवन में और दुख दीजिए, जितने ज्यादा आप मुझे दुख देंगे उतना ज्यादा मैं आपका स्मरण करूंगी, उतनी जल्दी मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा पाऊंगी। इसलिए इस संसार में अगर हमारे को बहुत दुख प्राप्त हो रहे हैं तो हमें मानना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है। अगर हम दुखी है संसारिक दृष्टि से तो हमें भगवान की विशेष कृपा मांगनी चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा हम दुखी हैं उतने हम सत्य के समीप हैं, क्योंकि भौतिक जगत को दुखालय बताया गया है। और जितने ज्यादा हम तथाकथित सुखी हैं उतने ज्यादा हम भ्रम में सत्य से दूर हैं। तो अगर हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं तो हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम सत्य के समीप हैं। जब अक्सर ये लोग बातें सुनते हैं तो कहते हैं आप बहुत ही पेसिमिस्ट व्यक्ति हो, गंदी गंदी बातें करते रहते हो, क्या है ये भागवतम का इससे क्या लेना देना। लेकिन देखिए भागवतम में बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने गीता का संदेश तभी सही ढंग से स्वीकार कर पाया क्योंकि अर्जुन मान गया था कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, कि केशव मुझे संसार में सारे के सारे लक्षण विपरीत प्रतीत हो रहे। और जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया इस गीता के दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, तब भगवान ने उनको बोला, विश्वनाथ चतुर्थी पाठ कहते हैं कि तुम मेरी शरण में क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य देता हूं, निश्चित रूप से तुम यहां जीतोगे और तुम्हें स्वर्ग का राज्य भी देता हूं। तो अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का राज्य, नहीं चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होगी नहीं चाहिए कोई भौतिक सुख। वास्तव में ये शब्द ही गलत है, भौतिक सुख, भौतिक सुख होता ही नहीं, ये भ्रम है, सुख जैसा लगता है कुछ नहीं है। तो ये कोई निराशावादी बात नहीं है। याद आता है बहुत पहले कॉलेज टाइम में हमने कोई इंग्लिश का नॉवल पढ़ा था, तो कई बार बता कि बहुत सुंदर परिभाषा है, उन्होंने बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। कि अ पेसिमिस्ट थिंक्स दैट मैरिज इज अ डिजास्टर, बट एन ऑप्टिमिस्ट नोज दैट इज मैरिज इज अ डिजास्टर। तो जो एक निराशावादी व्यक्ति है वो सोचता है, लेकिन जो आशावादी व्यक्ति है वो जानता है। तो अगर हम जान ले कि बहुत ही जगह दुखाले है तो ये ऑप्टिमिज्म है, ये पेसिमिज्म नहीं है। फालतू में हम अपने आप को उत्साह बढ़ाते रहे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होने वाला यहां पे, क्योंकि ये भगवान की योजना है, ये हम दुख है। तो भक्त जो भगवान की योजनाओं के अनुसार चलता है, तो जब उसको भौतिक सुख प्राप्त होते हैं तो सावधान हो जाता है, कहना भ्रमित तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ जनों में गलती कर रहा हूं। तो बहुत साहस चाहिए प्रार्थना करने के लिए। कितने भक्तों ने हमारे में ये साहस से हम जाके प्रार्थना करेंगे भगवान मेरा बिजनेस चौपट कर दो, कितने में हिम्मत है बताइए कि गुड दुख दे दो मुझे, नहीं है हिम्मत, डरते हैं बिल्कुल। भगवान कहते हैं ऐसे हम अनुग्रह क्या हरिष्य तम धनाश्य, नहीं इतनी कृपा नहीं चाहिए आपके भगवान, ऑप्टिमम कृपा चाहिए, ना अधिक ना ज्यादा, ठीक ठीक चाहिए भाई, काम चलता रहे हमारा। लेकिन जो असली भक्ति है वो ये कि भगवान से दुखों की प्रार्थना की जा रही है ताकि हम जीवन के लक्ष्य में अपने हृदय में योजनाएं बनाएं, सुख की योजना नहीं दुख की योजना है, कि दुख दो ताकि मैं आपकी भक्ति और दृढ़ता से कर सकूं और अपने आप को शरणागत हो सकूं। जहां जहां कृष्ण रहे हैं वहां हमेशा कुछ ना कुछ व्यथाएं आती रही, ब्रजवासियों का जीवन कभी भी सेटल नहीं हुआ, कभी ये दामन कभी वो असुर कभी इंद्र नाराज हो रहे हैं कभी कालिया नाग आ गया, कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहे। तो कृष्ण भक्तों के जीवन में उथल पुथल अवश्य होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है इसका मतलब हम भक्ति में सही नहीं चल रहे। सही बात है, ये बिल्कुल शास्त्रों की बात है। अगर ब्रजवासियों के भाव में आना है तो उथल पुथल जरूर होनी चाहिए, जितनी ज्यादा उथल पुथल होगी उतनी ज्यादा हमारी शरणागति बढ़ेगी। अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको गालियां दें, जो आपको क्रिटिसाइज करें। भक्ति साहब श्री ठंड महाराज एक ब्रह्मचारी गए प्रचार करने, वहां के लोगों ने खूब पत्थर मारे उनको, तोड़फोड़ कर दी, पूरा पंडाल तोड़फोड़ कर दिया, उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया। जब भक्ति साहब महाराज की खबर गई उन्होंने खूब तालियां बजाई, उस ब्रह्मचारी को गले लगा लिया, बोले तुम्हारा प्रचार सफल हुआ। हमारे प्रचार की सफलता ये नहीं कितनी तालियां बजे, हमारे प्रचार की सफलता है लोग कितनी गालियां देंगे, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, तो इस सत्य हमें साहस पूर्वक बोलना चाहिए। तो ये सफल प्रचार है। तो दुख की हमें योजनाएं बनानी चाहिए, क्यों नहीं आ रहे दुख, ये हमें ये भक्ति में आगे बढ़ने तभी भौतिक इच्छाओं का दमन होगा। फिर बताया गया कि भगवद गीता के दूसरे श्लोक में बताते हैं भगवान कि अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं फिर भी हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके अध्याय का 17वां श्लोक है, आपूर्ण मानव अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा पविशंति तद्वत कामांति सर्वे सा शांति आपमूति ना काम काम है, कि जिस तरह से नदियां समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं उसी ढंग से विषय मन के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन सा शांति आपमूति ना काम काम है, कि लेकिन अगर इन काम वास्ताओं की पूर्ति के लिए भागेंगे तो कभी भी हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। तो क्या करना है, इन इच्छाओं को बने रहने देना है लेकिन इनकी पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करना। जितना हम इनको इग्नोर करेंगे धीरे 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 ये सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर हम इसको इनको ओवरकम कर पाएंगे। चौथा पांचवा है कि फिर भी हमारा मन भटकेगा, कर रहे हैं इच्छाएं भी हैं, मन भटकेगा विषयों की तरफ भागेगा, तो क्या करना चाहिए, तो इसको रोकने के लिए बताया गया है। सबसे क्या करें हम पांचवा स्टेप, कि जब भी हमारा मन भटके तो हमें गुरु के आदेशों पर मनन करना चाहिए, शास्त्रों के आदेशों पर मनन करना चाहिए, साधुओं के आदेशों पर मनन करना चाहिए। हम मनन करेंगे तो हमारा मन चलेगा, कि ये हमारे दुख का कारण बनेगी तो हम इससे बच सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी को जब उनके शिष्य शिक्षा लिखते थे उस समय कि हमें काम बहुत सता रहा है, तो प्रभुपाद उनको बोलते थे कि ये नेचुरल है, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, काम वास्तवों से हर कोई पीड़ित है, लेकिन हम मदन मोहन की शरण ग्रहण करें, गुरु का स्मरण करेंगे तो हम इस काम वास्तवों को हम सहन कर पाएंगे, है ना। तभी बताया गया है जब उपदेशामृत के पहले श्लोक में कि धीर व्यक्ति इनको सहन करते हैं, इन वेगों को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इनको सहन करना है। तो जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो हमें सहन शक्ति मिलेगी, तो हम इस वेग को सह पाएंगे, तो हमें गुरु के आदेशों का मनन करना चाहिए। क्या होगा, गुरु के आदेशों के मनन करने के बाद भी इच्छा बहुत तीव्र है, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं भागवतम के 11वें स्कंद में कि हमें अपनी सेवा को ओत प्रगाढ़ कर देना चाहिए, बहुत तीव्रता से सेवा करनी चाहिए, इंटेंसिफाई कर देनी चाहिए सेवा और तीव्र करनी चाहिए। तीव्रण भक्ति योग है, कभी भी ढीली ढाली भक्ति नहीं होती, धीरे ढाले भक्ति। श्री प्रभुपाद कहते हैं दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज नॉट मेंट फॉर लेजीज एंड क्रेजीज, भक्ति में आई है तो सबसे पहले सुस्ती त्यागनी पड़ेगी। एक शिष्य का एक गुण है दक्षा, दक्षा का अर्थ है कि उसको सुस्त नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, है ना, मोरोज उदास सुस्त दुखी, ये शिष्य के लक्षण नहीं है। शिष्य को हमेशा तीव्रता से गुरु के आदेशों के पालन में लगे रहना चाहिए, सुस्ती का कोई स्थान नहीं है, सुस्ती शरीर देहात्म चेतना है। गोपियों ने कभी सुस्ती नहीं की भगवान की सेवा के लिए, क्या है हर बारी मुंशी बजाते हैं, चलते हैं ना, आराम से चल पड़ेंगे, रोज का ही तो काम है, धीरे धीरे चलता है प्रभु, आराम से धीरे धीरे, नहीं सुस्ती यहां कुछ नहीं है। अगर मंगल आरती के लिए उठना है तो उठना है, अगर सेवा करनी है तो करनी है, तो सुस्ती से नहीं तीव्रता से हम सेवा करनी चाहिए। तो जितनी तीव्रता से सेवा करेंगे तो मन जो हमारा भटक रहा है उसको हम स्थिर कर पाएंगे। फिर छठा है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। देखिए हम सब इस वाक्य को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इस मनुष्य देह का लक्ष्य है कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। ये वाक्य सुनने में तो छोटा सा वाक्य है, इसे बहुत गहरे अर्थ है कि कृष्ण के साथ संबंध पुनः स्थापित करना, इसका क्या अर्थ है। संबंध तभी स्थापित होगा जब मुझे मालूम चल जाएगा कि मैं कौन हूं और कृष्ण कौन है, यानी कि जब मैं अपने स्वरूप को पहचान जाऊंगा तब जाके संबंध स्थापित होगा, यानी कि शरीर के छोड़ने से पहले मुझे मालूम चल जाना चाहिए कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, माधुर्य रस में, साखे रस में, वात्सल्य रस में, दाक्ष्य रस में, शांत रस में क्या संबंध है और मेरी क्या सेवा है। ये मनुष्य देह इसलिए मिला है। तो कभी सोचा है हमने इस रास्ते में? हम तो अभी तक ये भी इस बात के ऊपर उठ पाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। आत्मा तो हो ठीक है, लेकिन आत्मा क्या क्या स्वरूप है आपका, कैसे मालूम चलेगा ये? तो अभी तो हम साधना क्रिया कर रहे हैं, साधना वैली भक्ति, फिर रागुनागा भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, बहुत सीढ़ियां चढ़नी है अभी। तो छोटी छोटी बातों में विस्तृत होते यही फंसे रह जाएंगे। सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, टॉप गियर में चलना चाहिए, बहुत सीढ़ियां क्रॉस करनी है और क्योंकि छोटी छोटी बातों में फंसे रह जाएंगे तो यही धरे रहेंगे। बहुत जमे कभी श्रवण कीर्तन तदुना का कृष्ण पदे, तो प्रेम धर्म ने प्राप्त करना है। तो श्रीला प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक हम उठा लेंगे, एक एक शब्द हमें प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि तेजी से भक्ति करो, तेजी से। प्रभुपाद का कोई भी आप लेक्चर सुन लीजिए, वो हम सबसे करुणावश चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं कि डोंट वेस्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, इसको जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाइए। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, तो हम सब के अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है और अभी हम बहुत दूर हैं। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। अभी तो हम भजन क्रिया भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे, साधु संग भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे, कहां कैसे पहुंचेंगे? प्रणादपि सुनि चैन तरोरपि सही सुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदाहरी। ये हमारे लिए कल्पना लगती है कि हमारी पहुंच से बहुत दूर। ये तो भक्ति के जो रूप गोस्वामी ने 9 स्टेप्स बताए हैं उसका एक चौथा कदम है, निष्ठा का स्तर है। आगे बहुत बढ़ना है, यही हमें इतना दूर लग रहा है, हम अपने अनर्थों से इतना जूझ रहे हैं, कहां पहुंच पाएंगे? तो इसलिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। भक्त लगन जब आपस में मिले, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाएं, एक दूसरे को याद दिलाएं, छोटी छोटी बातों में निंदाओं में नहीं फंसना, टॉलरेट करना सीखना चाहिए हम सबको। संसार में टॉलरेट करना ही चाहिए, अगर हम भक्तों को टॉलरेट नहीं करेंगे तो फिर माया को टॉलरेट करना पड़ेगा, और माया को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। माया देवी के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल से हमें मारा जा रहा है, लेकिन भक्त लोग त्रिशूल से नहीं मार रहे, थोड़ी बहुत भक्तों में जो कमी है उसको सहन कर ले, और सहन करते हुए तीव्रता से सेंस ऑफ अर्जेंसी से हम भक्ति करें तो हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और फिर कितने हो गए थे? 6, 7वां है, 10 है, जल्दी चलते हैं। 7वां बताया गया है कि 10वां नाम अपराध जो हम कर रहे हैं, हरि नाम की अगाध महिमा सुनने का भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो हम भक्ति में जुड़ गए हैं फिर भी भौतिक इच्छाओं को बनाए रखते हैं। भौतिक इच्छाएं तो हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए इससे हम निवृत्त हों। थोड़ी सी भौतिक इच्छा हो सकती है, बोले प्रभु जी मुझे बस स्वीट राइस खीर खाना अच्छा लगता है, चलने दो क्या फर्क पड़ता है, और कोई आकर्षण नहीं है, कुछ नहीं है, खीर खिला दो बस आनंद में। फिर बनी हुई इच्छा, और इसी इच्छा को हम बनाए रखते हैं, क्या इससे कोई नुकसान थोड़ी है, प्रसाद ही पा रहे हैं, है ना? लेकिन यही इच्छा बोलते हैं ना, इंद्रियाणी परमार्थिनी हरंती प्रसभावना, कोई एक इंद्री भी हमारे पतन का कारण बन सकती है, एक इंद्री भी। तो हमें प्रयास करना चाहिए हरि नाम की अगाध महिमा सुनने के बाद ये भौतिक इच्छाएं बनाए रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो देखिए जैसे एक करताल है, इस करताल का क्या वजन है? कुछ नहीं। अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो कुछ ज्यादा मुझे महसूस नहीं हो रहा है इसका वजन, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही पकड़े रहूं ना, फिर धीरे धीरे मेरे दुख का कारण बन जाएगा। बोले छोटी सी तो भौतिक इच्छा है, छोटा सा तो करताल है उठाया हुआ, लेकिन इसको बनाए रखा मैंने, इसको अपने हृदय में रखे रखा, तो ये थोड़ी सी इच्छा ही मेरे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इन इच्छाओं से हम मुक्त हों। तो कैसे? तो हरि नाम की अगाध महिमा हम सुन रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, हरि नाम की महिमा सुनेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, उतनी हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए हरि नाम पे कि हरि नाम से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। किस तरह का विश्वास होना चाहिए? रामायण में कथा आती है, जब रावण का वध हो गया और विभीषण जी को राज्यभिषेक किया गया, तो जब सबके सब भक्तगढ़ वापिस जा रहे थे तो कुछ राक्षसों ने विभीषण से पूछा कि अब तो वो सेतु नहीं रहा, अब लोग वापिस कैसे जाएंगे लंका से। तो विभीषण ने कहा घबराने की बात नहीं है। उन्होंने एक अश्वत्थ वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, उसके ऊपर राम का नाम लिखा और एक कपड़े में बांध करके एक राक्षस को दे दिया, बोलो इसको जाओ और सागर पार कर लो। तो उस राक्षस ने वो कपड़े में जो पत्ती बंधी हुई थी उसको लेकर सागर में कूद गया और चलना शुरू कर दिया। और चल रहा था, पानी उसे घुटनों तक था, तो बड़ा आश्चर्यचकित। आधा जब सागर उसने पार कर लिया क्योंकि वो राक्षस था, उसने सोचा क्या है, कैसे हो रहा है, इसके अंदर क्या है, देखो जरा। उसने खोला, देखा अंदर क्या लिखा, राम। तो जोर से हंसा, क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, मूर्ख बना दिया मुझे, इससे थोड़ी मेरी रक्षा हो रही होगी। तो ये संदेह ही आना था उसके अंदर, जैसे ही डाउट हुआ क्या हुआ, तुरंत सागर बढ़ गया और वो वहीं पे डूब गया। तो इसलिए हमें हरिनाम की महिमा पे तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ हमें श्रवण करना चाहिए। हमारा श्रवण भी अच्छा क्यों नहीं हो पाता, उसका भी यही कारण है कि हमें भौतिक इच्छाएं बना रखी है। भक्ति सर महाराज जो कथा सुनाते थे ना कि एक शादी की पार्टी निकली और लंगर वहीं का वहीं रह गया, पूरी रात नाव चलाते रहे, सुबह उठे तो नाव वहीं की वहीं थी। इसी ढंग से हम 16 माला किए जा रहे हैं, भागवत श्रवण किए जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमारी भौतिक आ सकते हैं इसको आप छोइए मत प्रभु जी, बस ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये यही रहूंगा, इसको मैं कुछ नहीं बदलूंगा, है ना। तो क्या वो लंगर हटाएंगे, लंगर नहीं हटाएंगे तो करते रहेंगे, गाड़ी वहीं की वहीं टिकी रहेगी। तो हमें भक्तों के संपर्क में जाना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के अपने आगे अपने हृदय को खोलना चाहिए। ये काम जो रोग है इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए। तो जो वरिष्ठ भक्त हैं वो घुसेंगे आपके हृदय के अंदर और जो एक अनर्थ है उनको बाहर निकालेंगे, इसके लिए हमें शर्माना नहीं चाहिए, हृदय को खोलना पड़ेगा तभी ये काम वास्तव में हमारे बाहर निकाले जाएंगे, इन आसक्तियों को दूर करना पड़ेगा। तो ये था सातवां। फिर आठवां बताया गया है कि जब तक हम ये रियलाइज ना कर पाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये रजोगुण से मोहित होकर हम गलत काम कर रहे हैं, इसको हम काउंटर कर सकते हैं सत्वगुण को बढ़ाकर। तो भागवत के 11वें स्कंध में भगवान ने 10 ऐसी वस्तुएं बताई हैं जिनका हम सही ढंग से प्रयोग करके अपने सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा लंबा विषय है लेकिन शॉर्ट में आपको बताते हैं कि मुख्यतः उसमें यह है कि हम सबको जल्दी उठना चाहिए सुबह। श्री प्रभुपाद ने अपने फाइनल लेसन में यही बोला कि सब भक्तों को मंगल आरती के लिए उठना ही चाहिए। हमारे यहाँ कई भक्त हैं जो ग्रस्त आश्रम हैं और प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं, प्रतिदिन, बहुत बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। लोग बोलते हैं मैं काम धंधा करते हुए परिवार को संभालते हुए पति पत्नी अगर मंगल आरती में आ रहे हैं निश्चित रूप से राधिका रमन जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये हम सबको करना है, अगर मंदिर नहीं आ सकते तो घर में जरूर उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय तक हमें उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत शक्तिशाली समय है, उसमें हम जो भी कार्य करेंगे बहुत अच्छे ढंग से होगा। अगर आप सोना भी चाहेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छी नींद आएगी। भगवान ये व्यवस्था करते हैं, उसमें भगवान पूरी कृपा करते हैं, आप जो चाहते हैं वो कार्य अच्छे ढंग से होगा। अगर साधना करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से साधना होगी। तो निश्चित रूप से हमें 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, इस ढंग से जीवन को ढालना चाहिए और उठकर भगवान के गुरु का स्मरण करना चाहिए। और जितना हम जल्दी उठेंगे उतना हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। और दूसरा, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, असत संग त्याग करना चाहिए, उससे हमारा रजोगुण बढ़ता है। और भक्तों को स्थान, किस स्थान में रहना है ये भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा ये रुचि होनी चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहें, एकांतवास करें। एकांत का अर्थ है यहाँ पे केवल एक ही अंत हो, यानी केवल कृष्ण कथा हो। भक्तों की रुचि नहीं होनी चाहिए पार्टीज में जाने के लिए, भक्तों की रुचि, भक्तों को आकर्षित नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आ गए हैं, नया ब्यूटी पार्लर खुल गया है, नया कोई टीवी थिएटर खुल गया है, इसमें कोई रुचि नहीं होनी चाहिए जाने के लिए। भक्तों केवल भक्तों का संग। तो इस ढंग से हमें अपने सत्वगुण को बढ़ाना है। और फिर बताया गया कि भक्तों को शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध पानी से स्नान करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई हमें परफ्यूम, कोलॉन और ये सब जो आजकल कॉस्मेटिक्स है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा रजोगुण बढ़ता है, कामों की इच्छाएं बढ़ती है, तो इस ढंग से हम अपने सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आठवां। और नवा बताया गया है कि हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि मन को विषयों से और विषयों को मन से अलग करने हमारे लिए संभव नहीं है। एक चुंबक को लोहे से अलग करना संभव नहीं है, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, और ये शक्ति, ये कार्य केवल सर्वशक्तिमान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो कृष्ण हमारे कर्णों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, और कृष्ण बताया गया है द होली नेम टॉर्चर द लस्ट, ये काम को पीड़ित करता है। तो जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे ये काम को पीड़ित करेगा, हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण को मदन मोहन बताया गया है। तो ध्यान पूर्वक जप करने से हम अपनी भौतिक इच्छाओं को का दमन कर सकते हैं। जब हम जप करते हैं तो हमें मनन करना चाहिए कालिया दमन की लीला का, जिस ढंग से कालिया नाग द्वेष से भरा हुआ था और जब भगवान उसके फन पर नाचे तो धीरे धीरे सारा का सहर जहर उसने उगल दिया और फिर उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। उसी ढंग से हम जब नाम ले रहे हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नाच रहे हैं, लेकिन यदि हम कालिया नाग किस तरह है, द्वेषी जीव है, तो जितना ज्यादा हरि नाम लेंगे धीरे 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 हमारे अंदर से जहर निकलेगा और हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। तो माला मुकुंद स्तोत्र में बताया गया है कि हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो इस संसार की आकर्षक से आकर्षक वस्तु भी हमारे लिए काष्ठ और पाषाण की तरह हो जाती है, लकड़ी और पत्थर की तरह हो जाती है, कोई आकर्षण नहीं रहता अगर हम ध्यानपूर्वक जप करें। यमुनाचार्य जी बताते हैं ना कि जब से मैंने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की है तो अगर मैं स्त्री के संग के विषय में सोचता भी हूं तो मैं थूकता हूं, जो कि संसार का सबसे बड़ा सुख बताया गया है। तो इस सब स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं, इन भौतिक आकर्षणों को हम पार कर सकते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें। और अंतिम है कि हमें अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में कृष्ण को देखना चाहिए, किसी भी स्थिति से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और जो भी हमारे ऊपर कष्ट आए हमें जानना चाहिए कि ये कष्ट मेरे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं उसके कारण ही मुझे कष्ट प्राप्त हुआ है। जब तक व्यक्तिगत रूप से हम इसको नहीं लेंगे हम इन इच्छाओं का दमन नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना है। तो अगर हम सही प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, हमारे प्रयासों में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, ये संभव है। भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं देहो ज्ञान तपसा तुमका मत भावम आगता, तुमसे पहले बहुत से लोगों ने ये तपस्या करके मुझे प्राप्त कर लिया है। तो हमें उत्साही रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए, हमें लोगों के मत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का मत ही मेरे लिए सर्वोपरि है बस। और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, नियमों का सख्ती से पालन करेंगे और हम देखेंगे कि हम भी धीरे 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 भौतिक इच्छाओं का दमन करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे और अपने हृदय में हम राधा कृष्ण को बैठा सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि विरोधदास ठाकुर कह रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर युगल अतिशोर जीवन है मरण गति आत्मा, यही मेरे जीवन की गति होनी चाहिए, ये हृदय बना है केवल राधा कृष्ण के लिए, केवल याद रखिए ये हृदय कहीं नहीं देना हमें, इस संसार का कोई भी जीव इस लायक नहीं है जिसको ये हृदय हम दे सके। कृष्ण है चित चोर, कृष्ण के लिए हृदय को संभाल के रखना है बस, ये बात हमारे अंदर स्पष्ट होनी चाहिए, हृदय केवल कृष्ण के लिए है, चाहे कोई पुरुष है चाहे कोई स्त्री है। माता कुंती तो ये प्रार्थना कर रही है कि अगर मेरे परिवार वालों का प्रेम भी आपके रास्ते में बाधा बन रही है तो उस प्रेम के संबंध को भी समाप्त कर दो, लेकिन आपके और मेरे प्रेम में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हृदय केवल आपके लिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसा सोच लें कि भक्त हम बड़े कठोर हृदय के हो जाते हैं, नहीं, अगर हमें कृष्ण से प्रेम होगा तो हम हर एक जीव से वास्तविक प्रेम करेंगे, अन्यथा ये सारा प्रेम दिखावा है। जैसे ही कृष्ण से प्रेम होगा हमारा हृदय बहुत कोमल हो जाएगा, एक एक जीव को हम प्रेम देना चाहेंगे, हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा और प्रेम बाहर निकलेगा, हर एक जीव को हम प्रेम बांटेंगे। श्री प्रभुपाद जब विदेशों में जाते थे और हवाई जहाज से नीचे उतरते थे तो वहां के लोगों को लगता था इधर ओशियन ऑफ लव,
कि प्रेम की बाढ़ निकल रही है बाहर। प्रभुपाद की मुस्कान से ऐसे लगता था कि वो प्रेम को बांट रहे हैं, और प्रत्येक जीव को ऐसा लगता था कि प्रभुपाद के संरक्षण में बहुत सुरक्षित है। तो वास्तव में अगर हमारे हृदय में कृष्ण आएंगे तो हमारे परिवार वालों के साथ हमारे संबंध और मधुर हो जाएंगे, हम उनकी और अच्छी ढंग से सेवा कर पाएंगे और उनको प्रेम दे पाएंगे। लेकिन कृष्ण और हमारे बीच में कोई भी वस्तु आ रही है तो उसको हमने अलग करना है, और सारा का सारा प्रेम हमने कृष्ण को देना है। ये हृदय केवल कृष्ण के लिए है। तो जो बताया गया है कि नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना लाल, ये सारी इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए। तो जैसा बोलते हैं एक्सटर्नल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल, हमारा अगर हृदय शुद्ध होगा तो आप देखेंगे भक्तों के जो चेहरे हैं, भक्तों का जो व्यक्तित्व है वो अलग ही। श्री प्रभुपाद के व्यक्तित्व को उनके देखते ही, उनके आचरण को देखते ही लोग भक्त बन जाते थे, क्योंकि उनके हृदय की पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध था। तो ये जो हीरे स्फटिक हीरे मोती पन्ना बताए गए हैं, ये है कृष्ण प्रेम। इसको भौतिक इच्छाएं नहीं रखना, इसको अपने कृष्ण प्रेम में परिवर्तित करना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी है? का प्रश्न है कि अगर कोई पारिवारिक जीवन में आराम से भक्ति कर पा रहे हैं तो ठीक है, आराम नहीं होना चाहिए था, आराम आराम कंफर्ट जोन में नहीं जाना हमें कभी भी। ये सबसे बड़ा बद जीव के लिए सबसे बड़ी रिस्क है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्रिएटिव टेंशन लेना चाहिए, है ना, रबड़ है ना, खींचा खींचा और खींचो और खींचो और खींचो और खींचो, एक टूटना नहीं है, कितना खींचना ये गुरु बताएंगे, गुरु खींचेंगे, अपने आप खींचेगा टूट जाएगा, धीरे धीरे खींचना, कितना खींचना गुरु खींचेंगे, तो गुरु खींचते रहेंगे आपको, तो कंफर्ट गुरु कभी भी कंफर्टेबल ही रहने देंगे आपको, गुरु शिष्य को दौड़ाते रहते हैं। गुरु ऐसी ऐसी सेवा देते हैं और इस धन की स्थिति में डालते हैं कि हमेशा भक्ति में व्यक्ति हाई नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा सेटल हो गया तो वो सो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो अगर आराम लग रहा है आपको तो गलत है, संपर्क के लिए और कुछ सेवा लीजिए। सेवा करेंगे तो अपने आप एंग्जाइटीज बढ़ती हैं, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, और सारे अनर्थ सामने आते हैं, फिर अनर्थों से जूझेंगे। अगर सेवा नहीं करें तो व्यक्ति सोचा मैं कितना विनम्र हूं, कितना अच्छा हूं, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। तो सेवा करते हैं ना तब मालूम चलता है क्या क्या अनर्थ है। जो कालिया नाक के जब कृष्ण ऊपर नाचे तब सारी जहर बाहर निकली, जो सेवा करते हैं तब जहर निकलते हैं अंदर का, अनर्थ सामने पिक्चर दिखाई देती है, तब हम कंफर्टेबल नहीं रह सकते, तब व्यथा बढ़ेगी, तो होना चाहिए। इसका अलग ये नहीं कि महाराज उदाहरण देते हैं कि दुख आना चाहिए, सब्जी काट रहे काटते अपनी उंगली काट रहे कि सब कुछ सुखी चल रहे हैं, ये थोड़ा सा दुख लगेगा, ऐसा नहीं करना ना। जबरदस्ती बिजनेस जा रहे हैं तो जबरदस्ती गलत साइन कर दिया, गलत डील कर लिया कि नुकसान होना चाहिए, बहुत हो गया फायदा नहीं, हम कृष्ण की सेवा में लगे हैं, हम तो बिजनेस से करेंगे ज्यादा लाभ प्राप्त हो और सब कृष्ण को दे। बुद्धि का प्रयोग करना, ऐसा नहीं कि जाके बस के आगे खड़े हो जाना, एक्सीडेंट में इस ढंग के कष्ट नहीं पहुंच जाते, क्योंकि हमने कृष्ण की सेवा में लगा। देखिए अब आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, तो उसका स्पेसिफिक आंसर उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जनरलाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है, वो है ना, रबड़ कितना खींचना है, तो उस रबड़ की टेंशन देखी जाए कितनी टेंशन है। नॉट ऑप्शनल, जनरली स्पीकिंग नहीं है, जनरली स्पीकिंग नो, But Guru Maharaj also gives sometimes concession. Exceptional cases are not been there. तो एक प्रश्न है कि हमारा परिवारजनों के प्रति जो प्रेम है ये कृष्ण प्रेम के कारण है कि लस्ट के कारण है. अच्छा प्रश्न है. तो इसका यही सूचक होगा कि हमारा जो परिवारजनों के प्रति प्रेम है वो सेंटिमेंटल नहीं होगा. हमारा प्रेम यही होगा कि कैसे इनकी अध्यात्म चेतना का विकास हो, कैसे ये भक्ति में आगे बढ़े, है ना, कैसे भक्ति में आगे बढ़े. तो ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है. वही बात हो, उदाहरण कितना टेंशन लेना है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया. मन में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझको अपने परिवार वालों को भक्ति में आगे बढ़ाना है. तो कभी हर एक परिवार की स्थिति अलग है. कहीं सख्ती से काम चलता है, कहीं नरमी से, कहीं मिश्रण करके, हर एक स्थिति अलग अलग. आते ऑब्वियसली निश्चित रूप से कृष्ण और मैं मीन्स कृष्ण की जो प्रतिनिधि है भक्त में. हाँ, उसका अर्थ यही है, यानी कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना. और इस भौतिक देह में, इस भौतिक आंखों से मैं कृष्ण को नहीं देख सकता. तो मेरे सामने जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण का नाम, कृष्ण के ग्रंथ, कृष्ण की वाणी, कृष्ण के भक्त, वही उसका अर्थ यही है. निश्चित रूप से ये प्रश्न था ना इनका, प्रेम और आसक्ति में यही अंतर होगा कि अगर आपके परिवार का केंद्र कृष्ण है, सबके सब परिवार जन का एक ही लक्ष्य है कि हमारे घर में विजय है, इनकी मिलकर सेवा करनी है. तो अगर सबका एक ही लक्ष्य है कि ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो फिर प्रेम ही प्रेम होगा. लेकिन लक्ष्य अगर ये नहीं है कि सब मिलकर भगवान की सेवा करनी है, सबके अपने अलग अलग एजेंडाज हैं, तो फिर वो आसक्ति है. अगर पूरे परिवार का एक ही लक्ष्य है कि घर में हमने विग्रह रखे हैं और सबको मिलकर इसकी सेवा करनी है, तो फिर वो प्रेम है, सब परिवार वालों में हमारा आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लक्ष्य अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से वो मन के विकार है, आसक्तियां हैं. जी का प्रश्न है कि कई बार इतने ज्यादा दुख आ जाते हैं कि मन विचलित हो जाता है. कुंती महारानी तो दुख मांग रही है, हम तो थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं कर सकते. तो फिर मन इतना विचलित होता है, लगता है कि थोड़ा सा सेटल करने प्रॉब्लम फिर भक्ति में लगे. तो ये बीमारी हमारे साथ है, सबके साथ. हम लोग ना ज्यादा सुख सहन कर सकते हैं, ना ज्यादा दुख सहन कर सकते हैं. तो जब हमें दुख आए, तो फिर देखिए इसकी जो कुंजी है वो है भक्तों का संग. भक्तों के संग में रहेंगे, अगर हम डाउन भी हो रहे हैं तो भक्तगण हमें डाउन नहीं होने देंगे. हम भक्तों के संग में रहें हमेशा, और बुद्धि का प्रयोग करें. ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. ये उतार चढ़ाव सारे मन के विकार, और मैं मन से अलग हूं. इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए हमें कि हम समझ जाइए मन का विकास करना है और मैं बुद्धि से अलग हूँ, मन से अलग हूँ। और ये जो बिजनेस है ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये आपका स्वरूप थोड़ी है। आपका स्वरूप ये थोड़ी है कि आप एक बिजनेस मैन हो। स्वरूप है जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, जीवन स्वरूप इज नॉट बिजनेस मैन और ए डॉक्टर और इंजीनियर। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव होता भी है तो कुछ भी नहीं है, इसको सहन करना चाहिए। तो हमें आचार्यों के जीवन पे मेडिटेट करना चाहिए। प्रभुपाद के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी वो भक्ति पर जड़ रहे। तो उनके लीलामृत पढ़ेंगे, उनके जीवन कथा को पढ़ेंगे तो उनसे बहुत उत्साह मिलता है। हमारा ये मेडिटेशन होना चाहिए कि भक्तों के चित्त को पढ़े और उनसे समझे कुछ, अन्यथा ये बहाना तो हमेशा ही चलता रहेगा कि मैं पहले इसको सेटल कर लूँ, ये सेटल करूँ तो ये बढ़ जाएगा, तो ये करूँ ये नाचते रह जाएंगे, है ना। समस्या की कमी थोड़ी है, एक सेटल होगी दूसरी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ फिर ऐसे करते रह जाएंगे। कुछ होगा, दो हाथ खड़े कर दो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे उत्तम उपाय है। हमारे सामने कृष्ण की हम सेवा करते हैं तो हमारा काम क्रोध बढ़ रहा है, तो हमें क्या मानना चाहिए? भक्ति के कारण हो रहा है कि हमारा सेंस ऑफ रेस्पेक्ट चिंतन कारण क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम भक्ति सही कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, अनर्थ सामने आएंगे लेकिन हम उनको आराम बड़ी आसानी से उसको पार कर पाएंगे। तो इसलिए बताया जाता है कि हमेशा भक्ति भी हमने करनी है, सब कुछ करना है, भक्तों के संग में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भक्ति लता बीज के साथ साथ कई जंगली पौधे भी साथ साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे हम सेवा में जुड़ते हैं मान की इच्छा आ जाती है कि मुझे मान चाहिए, लोग मेरा गुणगान करें, लोग पहचाने मुझे कि मैंने ये सेवा की है, तो ये इच्छा भी साथ साथ है। पद जीव के अंदर निश्चित रूप से आएगी आएगी और भक्ति लता बीज की है। तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, वरिष्ठ वैष्णवों के निरीक्षण में भक्ति करेंगे तो बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि इनके अंदर ये अपूर्ण आने वाले हैं, अनर्थ आ रहे हैं। तो वो हमें मदद करेंगे, हम जंगली पौधों को उखाड़ के फेंक सकें या हम उनका सिंचन ना करें। तो इसलिए भक्तों का संग अति आवश्यक है और ये सीखना चाहिए भक्तों का संग कैसे करना है। भक्तों का संग भक्तों की कमियां ढूंढने के लिए नहीं करना है ना। कमियां तो बड़ी आसानी से नजर आ जाएंगी। मन तो हमारा मक्खी के समान है जो कि मल पे जाता है। तो अगर हमारा मन इस समय गंदगी से भरा होगा और गंदगी से आकर्षित होगा, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, वैष्णव एटिकेट सीख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं केवल भक्तों में कमियां ढूंढने के लिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है, तो हम अपने को बहुत बहुत धोखा दे रहे हैं। भक्तों में हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, उनके अंदर अच्छे गुण ढूंढ देखने चाहिए। कमियां सब में है, सब में कमियां है, अच्छे गुण देखें। तो भक्तों का संग करना सीखें और भक्तों के संग में रहकर भक्ति करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बहुत सुरक्षित। ठीक है, तो बात कहते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज द सेफेस्ट प्लेस, बहुत सुरक्षित। तो भक्तों का संग नहीं करना और सीखना कैसे करना है एक साइंस है। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इसमें चर्चा करते हैं कि संग कैसे किया जाए। संग नहीं करते तो अपराध करते हैं और हमें भागते भक्ति से हम बाहर हैं। इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ फिर हमें खो, बहुत जरूरी है। तो संग करना हमें सीखना चाहिए। सीखना है ना, सीखना पड़ेगा ना। हमने हर भक्त को उतना ही आदर देना जितना अपने गुरु महाराज को देते हैं। अगर ये असूल बना लेंगे, जीवन का एक प्रिंसिपल बना लेंगे कि जो वैष्णव हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो महान भक्त है, मैं उसको उतना ही आदर दूंगा जितना अपने गुरु महाराज को देता हूँ, देती हूँ, अपराध होगा ही नहीं। हम सोचते हैं कि बस मैं और गुरु महाराज बाकी सब सब देखा, तो ये एंटरटेनमेंट ज्यादा तक नहीं चलेगा, देन इज एंटरटेनमेंट, इज नॉट भक्ति, है ना। ये केवल अपने मन मनोरंजन कर रहे हैं। अरे भक्त वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कश्य जल्दी से बहुत राम जन्म मना है। हम लोग सोचते सब साधारण है, एक एक व्यक्ति स्पेशल है, एक एक व्यक्ति जहां जो ही बैठा हुआ है यहाँ पे वेरी वेरी स्पेशल सो वेरी वेरी स्पेशल। अरे भक्त के चरणों में प्रणाम करना होता है कि सामाजिक रूप से नहीं कर सकते, मानसिक रूप से हरे को प्रणाम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, एक एहसान नहीं कर रहे किसी को आदर देते, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सबको आदर दे। हो सकता है कि ऐसी दृष्टि हो मुझे हमें किसी दुनिया पे गुस्सा भी होना पड़े, आज्ञा भी देनी पड़े, उसे सेवा भी लेनी पड़े, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सबका सम्मान करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इन इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी, कि भक्ति उठा अनर्थ आते रहेंगे। अगर भक्तों में अपराध करेंगे क्या होगा, भोग की इच्छाएं, लाभ की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, पूजा की इच्छा प्रबल होती जाएगी, बहुत प्रबल हो जाएगी, और हमारी भक्ति लगता देश को वो खत्म कर देगी। बहुत जरूरी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, जगदेश्वर गोपाल महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, पिता गोत्रे वंदे।